SBS हिंदी।
एक लड़की कितने सपने देखती है जब उसका दूल्हा चुन लिया जाता है। ये चुनाव अपने मन से हो या ना हो, सपने अपने मन से ही होते हैं। और जब दूल्हा विदेश में रहता हो तो थोड़ा सा डर, प्यारी सी घबराहट, एक नए देश में नई जिंदगी की सुगबुगाहट जैसे भाव और ज्यादा हिलोरे मारने लगते हैं। पर अब ये बातें शायद पुरानी हो गई हैं। अब जब भारत में कोई लड़की किसी NRI से शादी करती है तो पहला डर ये होता है कि कहीं ये शादी एक धोखा तो नहीं है। उनके सामने वे हजारों लड़कियां खड़ी होती हैं जिनके NRI दूल्हे उन्हें शादी के बाद छोड़कर चले गए। इस मुद्दे को और गहराई से समझने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी की मानवाधिकार विभाग में MA की छात्रा अलीशा नंदल ने एक अध्ययन किया है। उन्हीं से सुनिए कि उन्हें कैसी कैसी कहानियां मिली। अलीशा, आपने एक रिसर्च की है NRI ग्रूम्स के बारे में और उन लड़कियों के बारे में, खासतौर पर जिनको NRI दूल्हों द्वारा छोड़ दिया जाता है।
हाँ जी।
उस रिसर्च के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे हमें प्लीज?
तो ये मेरा रिसर्च एक्चुअली मेरा डिसर्टेशन प्रोजेक्ट था जो मैंने टेकअप किया, और फिर मैंने सर्वे किया, और जो मेरा सैंपल साइज था वो था अराउंड 35 अबैंडन्ड वाइव्स, अबैंडन्ड NRI वाइव्स। तो इसमें जो मेजर फाइंडिंग, सबसे ज्यादा जो रिमार्केबल जो फाइंडिंग मेरी थी, वो ये थी कि 100% अरेंज्ड मैरिजेस थी। तो लाइक अब हम ये कह सकते हैं दैट द ट्रेंड इज शिफ्टिंग, that arranged marriages are more or less becoming like they're becoming con marriages these days. So ये सारी अरेंज मैरिजेस थी जहाँ पे लड़कियों का सबका ये कहना था कि वो पहले नहीं जानती थी। और एक और चीज जिसमें फाइंडिंग थी वो ये थी कि अब ज्यादातर ये जो मैरिजेस थी ये मैट्रिमोनियल वेबसाइट से मैचेस टेकअप किए गए थे। 30% जो परसेंटेज था वो था कि रिलेटिव या फ्रेंड्स के थ्रू, और जो बाकी 70% था वो था कि आइदर न्यूज़पेपर या फिर मैट्रिमोनियल वेबसाइट। तो आजकल मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स के थ्रू बहुत ज्यादा ये चीजें ट्रेंड में है, और जो मतलब जो ग्रूम्स हैं दे आर नॉट रियली सीरियस अबाउट दिस थिंग, लाइक दे आर आइदर दे वांट टू कॉन दीज फीमेल्स और दे थिंक दैट यू नो दे हैव प्रिविलेज यू नो टू गो बैक इफ समथिंग गोज रॉन्ग। सो दे डोंट इवन थिंक कि जो लड़कियां हैं वो यहाँ पे they are getting victimized because of this and they are doing something wrong to the other life. They don't even think that. They just marriage karte hain directly ya indirectly, dowry mangi jati hai, but in all the cases dowry mangi jati hai. Kai jagah indirect hota hai ki parents ye keh dete hain ki ji hame to samaan dene ki zarurat nahi hai kyunki bachchon ne to bahar chale jana hai. तो दे आर लाइक इनडायरेक्टली कि हाँ आप अगर इन लोगों को वैसे आप हेल्प करना चाहते हैं तो दैट ये बाहर अपना कुछ कर लें, तो उसके लिए कैश एंड ऑल दे एक्सपेक्ट कि आप कैश दीजिए सो दैट वो वहां पे लड़के के काम आ सके। और कई जगह पे तो डायरेक्टली भी डाउरी मांगी जाती है। तो आई थिंक यहाँ पे लड़के आते हैं अपने पेरेंट्स के, कुछ पेरेंट्स के दबाव में, कुछ आई डोंट नो व्हाट रीजन दे डू दिस दैट दे बिकम सो इनह्यूमन दैट दे मैरी दीज विमेन एंड देन दे fly back to their respective countries within a month or even lesser than that.
तो आपके जो sample studies थी उनमें ज्यादातर में ऐसा हुआ कि एक महीने में वापस चले गए वो लोग?
Mostly, yeah.
तो उसके बाद यानी जब वो लोग वापस चले गए, ये लड़कियाँ अपने ससुराल में गई?
See, most of the cases लड़कियाँ ससुराल में ही रही हैं थोड़े time के लिए, क्योंकि जो लड़के जाते हैं वो आपको सभी मुँह पे बोल के नहीं जाते that it's over, you know. बहुत सारे तो ऐसे होते हैं जो कि शायद अच्छी इंटेंशन पे वापस जाते हैं कि हाँ हम लोग यू नो केस पुट अप करेंगे, आपका फाइल लगा देंगे। कुछ इस तरह से झूठ बोल के जाते हैं कि हम केस फाइल लगा देंगे तो वी आर गोइंग। दोनों तरह के लोग थे इसमें मेरी सर्वे में। तो अब मैं उनकी बात करूंगी जो ये कह के गए कि हम आपको बुला लेंगे और जो सही इंटेंशन से ये बोल के गए। ऐसे ऐसे केसेस में ये हुआ है कि यहाँ पे यू नो लड़की रही है अपने ससुराल वालों के साथ, तो वहां पे मदर इन लॉज मोस्टली, एंड दिस वाज रियली सरप्राइजिंग कि मदर इन लॉज का एक नहीं, मैंने कम से कम 10-12 केसेस में सुना कि मदर इन लॉज के साथ कोई ना कोई रोज का फ्यूड हो जाता है। तो मदर इन लॉ अपने लड़के को जिस तरह से बताती है, तो लड़की नहीं है, ऊपर से अरेंज मैरिज है, लड़का और लड़की में कोई अटैचमेंट भी नहीं है, तो धीरे धीरे वो रिलेशनशिप खट्टा होने लग जाता है। इवन इन वन केस द पर्सन वॉज फ्रॉम कैनेडा and uska passport was almost you know he was waiting for his passport to come and he knew ki uska passport 3-4 mahine mein aa jayega और उसकी मदर इन लॉ उसको कॉन्स्टेंटली, मतलब जो लड़के की मदर थी उसको कॉन्स्टेंटली रोज पोक करती रहती थी कि ये लड़की ठीक नहीं है, ये लड़की ठीक नहीं है, जबकि लड़कों, जबकि माँ बाप ने ही देखी है लड़की. बट जैसे ही उसका पासपोर्ट आया, ही कॉल्स हर इन द मिडनाइट, उसका दिन होगा, उस बेचारी की रात है, और शी यू नो पिक्स इट अप, हर फोन एट अराउंड 3 AM in the morning, sorry, and he tells that I want divorce. Now she wants ki why you want divorce? He says that because meri mummy ko tum pasand nahi ho, tum meri mummy ke saath ladai karti ho, tum meri mummy ke saath behas karti ho, tum aage se bolti ho, to mujhe to divorce chahiye. Jo ki padhi likhi ladkiyan hain aajkal ki. मेरे सर्वे के अकॉर्डिंग कोई भी लड़की ऐसी नहीं थी जो ग्रेजुएशन से नीचे थी. इनफैक्ट मोस्टली एमटेक एंड एमबीएस एंड ऑल वर लाइक दैट, इवन टू ऑफ देम वर पीएचडीज.
हाँ, मैं मेरा अगला सवाल यही था कि ये जो लड़कियां हैं ये क्या, ये आमतौर पे ये माना जाता है कि गांव की लड़कियां हैं, बहुत अवेयर नहीं है, इसलिए इनके साथ ऐसा होता है.
हम लोग, जब मैंने ये अपना ये यू नो प्रोजेक्ट टेकअप किया था, जब उठाया था, तो मेरे दिमाग में भी एक ऐसा ही एक इल्यूजन था कि हाँ यू नो हमारे पंजाब साइड की जो ज्यादा रूरल एरियाज की लड़कियां हैं वो ज्यादा शायद इस चीज का यू नो विक्टिम बनती हैं, बिकॉज दे मे बी काइंड ऑफ फैंटेसाइज गोइंग अब्रॉड सो मच. बट जब आई वेंट टू द फील्ड एंड आई सॉ द थिंग्स, आई रियलाइज दीज All women are all educated women. In fact, सबसे ज्यादा notable बात यहाँ पे ये है कि जो MRIs होते हैं, ये जो ad देते हैं जब, तो ये मांगते हैं अच्छी पढ़ी लिखी लड़कियाँ. You know, they want doctors, they want engineers, they want girls from medical line, nurses and all that. Like, मतलब वो सब पढ़ी लिखी लड़कियाँ मांगते हैं, वो यहाँ आके पढ़ी लिखी लड़कियों से ही शादी करते हैं. और पढ़ी लिखी लड़कियाँ भी कहीं ना कहीं इसलिए शादी करती हैं क्योंकि उन्हें भी लगता है कि शायद यू नो शादी तो यहाँ भी होनी है, वहाँ भी होनी है, इट इज एन अरेंज मैरिज, लेकिन वहाँ पे आई थिंक उन्हें लगता है कि करियर को और उनके लाइफ स्टाइल को हर चीज को बूस्ट मिलेगा.
इन लड़कियों की जो फैमिलीज हैं वो क्या गरीब परिवार हैं? मतलब ऐसा भी नहीं है कि वो गरीब परिवार हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, क्योंकि आप बता रहे हैं कि लड़कियां,
ऐसा कुछ नहीं है. तो मिडिल क्लास फैमिलीज, अपर मिडिल क्लास फैमिलीज, इन फैमिलीज से मोस्टली बिलोंग करती हैं ये लड़कियां.
तो और रिसर्च में आपने क्या जाना?
मेन चीज ये है कि बहुत ही कम परसेंटेज था जो कि अपने हस्बैंड को ज्वाइन कर पाई उनके यू नो फॉरेन कंट्री में जाके. देयर वर हार्डली 3 cases out of 35 वेयर द वुमेन वर एबल टू गो टू देयर हस्बैंड्स प्लेस. तो वहाँ पे भी देवर यू नो सब्जेक्टेड टू डोमेस्टिक वायलेंस, उनके फोन ले लिए गए. इनफैक्ट एक लड़का तो वाज सच दैट उसने यहाँ तक कि बिल्कुल ही यू नो टोटली सेड दैट यू आर नेवर गोइंग टू टॉक टू योर पेरेंट्स. उसने उसको इतना ज्यादा मेंटली अपसेट किया कि आप अपने पेरेंट्स से ही कभी बात नहीं कर सकते हो, आप यहाँ पे रहो, पढ़े रहो. उसका पासपोर्ट तक स्नैच कर लिया गया. अब वो कैसे कैसे लड़की वापस आई है वो उसकी भी बहुत बड़ी स्ट्रगल है. वो मतलब आई वाज आल्सो शॉक्ड टू नो दैट गाय वाज इन न्यूजीलैंड. इनफैक्ट मैंने अपनी स्टडी में जो रियलाइज किया, तो मैंने यही मेरी उसने यही सजेशन है स्टडी में कि जितनी भी लड़कियां जो NRI ग्रूम्स से शादी करती हैं उनको हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के थ्रू बाय पासपोर्ट ऑफिसर्स ट्विन पासपोर्ट्स दिए जाने चाहिए, जो कि एक पासपोर्ट उनके उनके पेरेंट्स के पास इंडिया में होना चाहिए लड़कियों के. तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सभी लोग ऐसे होते हैं, लेकिन 10 में से आज की डेट में 2 से 3 NRI मैरिजेज ऐसी ही निकल रही हैं.
और जब ये शादियां टूट जाती हैं या बहुत सारे मामलों में तो लटकती रहती हैं, उसके बाद क्या होता है? आपने क्या देखा कि उन लड़कियों का फ्यूचर क्या है?
मुझे तो उन लड़कियों का फ्यूचर बहुत ही डार्क दिख रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनको इतना जॉल्ट लगा इस चीज का, वो इतने सदमे में है कि वो लोग ना इस चीज से निकलना भी नहीं चाहती. उन्हें लगता है कि हमारे साथ ऐसा किया क्यों. मैंने बहुत उनसे पूछा कि आपको किसी की 2014 में शादी हुई है, किसी की 15 में हुई है, तो दे ऑलवेज हैव यू नो एन ऑप्शन ऑफ टेकिंग एक्स पार्टी डिवोर्स अगर आपका हस्बैंड पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है डिवोर्स में. तो ठीक है, बिकॉज दिस इज सब्जेक्ट टू क्रुएलिटी जो हमारे इंडियन IPC के तहत अगर एक हस्बैंड ऐसे डिजर्ट करके चला जाता है तो उसने क्रुएलिटी की है लड़की की तरफ, और लड़की उस ग्राउंड पे डिवोर्स ले सकती है जो कि एक्स पार्टी डिवोर्स हो सकता है, लेकिन लड़कियां नहीं ले रही हैं. उन्हें लगता है कि पहले वो यहाँ पे आए, हमें बताए कि हमारे साथ शादी क्यों की, मेरी जिंदगी खराब क्यों की, अगर मेरी जिंदगी खराब की है तो मैं भी तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं हूँ. या दे नॉट रेडी टू मूव ऑन. देखिए मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियां इन नो वे एबल टू यू नो डू एनी रॉन्ग टू देम, मतलब कहीं से भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पा रही है लड़कों का, ऑल्दो लेकिन उन्हें ऐसा लगता है
बिकॉज़ दे आर हर्ट एंड
हाँ हर्ट एंड एवरीथिंग, उनका इमोशनल, उनका वो सेंटिमेंटली सोच रही हैं, तो उन्हें लगता है कि हाँ ठीक है, अगर हम इतने ज्यादा मतलब उन्होंने हमें इतनी बड़ी फ्लाइट में डाला है तो फिर हम भी मतलब इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे, एटलीस्ट और कुछ नहीं तो हम एक आंसर तो दे आके, एक इंसानों की तरह भाग के ना खड़ा हो जाए, आके बोले, बात करे कि क्यों मेरे साथ ऐसा किया, क्यों शादी की इन द फर्स्ट प्लेस।
एक आखिरी सवाल अलीशा की,
हाँ जी,
आपको इस टॉपिक पर रिसर्च की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, क्यों आपने ये टॉपिक चुना?
एक्चुअली देखिए कि आजकल क्या होता है कि हम मतलब आई लिव इन चंडीगढ़, ओके, तो मैं पंजाब में हूँ और मैंने आसपास ऐसे न्यूज़पेपर उठाते हैं तो जैसे इतनी सारी ऐसी न्यूज मिलती है जैसे आपको पढ़ने को मिली होगी, तो ऐसे ही बहुत सारी न्यूज सुनने को मिली है, अपने आसपास मैंने ऐसी चीजें देखी है, माई फ्रेंड हैव बीन अ विक्टिम ऑफ दिस थिंग, तो I have very closely observed all this. मतलब ये चीज मुझे बहुत ज्यादा इस चीज में दर्द पहुंचाया है कि why? कि हम वही इंसान है जो यहाँ से जाते हैं, ठीक है, और जस्ट बिकॉज हमारे पास आज की डेट में एक कहीं ना कहीं प्रिवलेज है ऑफ यू नो सीकिंग रिफ्यूज इन अनदर कंट्री, आई विल नॉट इवन यूज द वर्ड रिफ्यूज या जो भी कह लो आप, कि हम दूसरी कंट्री में जा सकते हैं तो कहीं ना कहीं हम यहाँ की लॉ को या यहाँ के लीगल सिस्टम को कहीं ना कहीं डॉज कर सकते हैं, तो इस वजह से हम किसी के साथ भी बुरा कर दें। अगर आपको कोई चीज नहीं पसंद है तो जैसे यहाँ पे प्रॉपर जो इंडियंस के बीच में जो NRIs इन्वॉल्व नहीं होते जहाँ पे, तो जो ऐसी शादियां होती हैं उसमें भी तो आप एक दूसरे को यू नो एक दूसरे के सामने आते हो, कन्फ्रंट करते हो, तो NRIs को भी करना चाहिए, दे शुड नॉट डॉज दीज थिंग्स एंड दे शुड नॉट यू नो दे शुड नॉट हैव द इंटेंशन ऑफ कॉर्निंग द अदर पर्सन।
वेल थैंक यू सो मच हमें समय देने के लिए, बात करने के लिए, बहुत शुक्रिया अलीशा।
आप जुड़े हैं SBS हिंदी रेडियो के साथ। sbs.com.au/hindi पर जाएं और ऐसे अंश का आपकी भाषा में आनंद उठाएं।